सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अस्सलाम वालेकुम अंजुम, नाइस टू सी यू अगेन।
वालेकुम सलाम नदीम।
आज हम प्राइवेटाइजेशन पे, मैं सोच रहा था जरा बात कर लें क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू बन चुका है इस मुल्क में। लोग इस पे बहुत बातें कर रहे हैं, एंकर्स रोज शोर मचा रहे हैं, पॉलिटिशियंस इस पे लड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ इकोनॉमिस्ट भी प्राइवेटाइजेशन पे बात कर लें।
ठीक है।
तो आपका माशाल्लाह वर्ल्ड बैंक का एक्सपीरियंस बहुत है, आप पढ़ाते रहे हैं लम्स में भी और अब ये कराची का नया स्कूल ऑफ बिजनेस जो है, तो आप बताइए कि प्राइवेटाइजेशन क्यों होनी चाहिए। अगर मैं एक जरा सख्त स्टांस लूँ कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं, तो आप क्या कहेंगे?
मैं ये कहूँगा कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बेहतर तौर से प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो उनको यकीनन प्राइवेट सेक्टर में ही करना चाहिए।
हाँ, पर कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं ना, अब जैसे PIA की यूनियंस हैं वो शोर मचा रही हैं कि भाई हमारी नौकरियां चली जाएंगी।
हाँ।
कि हम बेघर हो जाएंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कौमी असासों का ख्याल नहीं रखेगा, तो हाँ। उसके बारे में क्या ख्याल है
नदीम? ये तो जो है उसकी जो प्राइवेटाइजेशन की डील होगी उसकी जो है डिटेल की एक वो है ये फीचर होगा कि आप पुराने एम्प्लॉयज को ग्रैंडफादर कर देंगे, उनको कैरी करेंगे कुछ, या उनको हैंडशेक देंगे या कॉम्पेंसेशन देंगे। मेरा ख्याल में थियोरेटिकल उस लेवल पे ये इतनी अहम चीज़ नहीं है।
अच्छा, तो बताइए कि फिर ये जो इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन की रीज़न दी जा रही है, जो मकसद दिया जा रहा है, वो ये है कि ये हमारा बजट का बहुत बड़ा खसारा है।
हाँ।
कि $6 बिलियन के लगभग हर साल नुकसान हो जाता है स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन से, और ये आदमी काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, और इसका जो नुकसान जो भरा जाता है वो टैक्सेस से भरा जाता है।
हाँ।
गरीब आदमी के सिर पे भरा जाता है, तो क्या फिर ये इनको वाकई प्राइवेटाइज कर दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे?
नदीम, कुछ चीज़ें तो प्राइवेटाइज हो सकती हैं और कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज करना मुश्किल है। जो चीज़ें प्राइवेटाइज हो सकती हैं उनको मेरे ख्याल में प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये तो बहुत सालों से ये सबूत जो है ये हमारे सामने है कि हमारी स्टेट जो है वो इनको एफिशिएंटली नहीं चला सकती।
अच्छा, तो अगर इस तरह तो भी देखें, स्टेट तो पुलिस भी एफिशिएंट नहीं चला सकती, स्टेट हाँ। तो कोर्ट्स भी नहीं एफिशिएंटली चला सकती, केसेस पड़े हाँ। हैं पिछले 50 साल से। तो मेरा मतलब ये है कि इस तरह तो फिर हम स्टेट को ही फारिग कर दें और प्राइवेटाइज कर दें।
जिस वजह से हम पाकिस्तान में प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं उसकी लॉजिकल कंक्लूजन यही होगी। इसलिए इसमें जो बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारी स्टेट PIA को एफिशिएंटली क्यों नहीं चला सकती, जबकि दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं जहां पे स्टेट एयरलाइंस बखूबी और बेहतर ऐसे तरीके से चल रही हैं।
यानी कि कतर, एमिरेट्स, इतिहाद माशाल्लाह ठीक चल रही हैं, बल्कि
बिल्कुल
हावी हो गई हैं प्राइवेट सेक्टर।
दुनिया की सबसे एफिशिएंट यूटिलिटीज जो हैं वो सिंगापुर में हैं और वो सब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चला रही हैं।
नहीं, पर देखें ना, ये तो अब कोई मतलब ना हुआ कि जो चीज़ देखें इस बिट, सॉरी मैं, लेट मी स्टेप बैक। मेरा ख्याल है कि ये तो हम दोनों अग्री करेंगे कि एक एंटरप्राइज चलाने का तरीका होता है एफिशिएंट तरीके से, वो चलाया जा सकता है, और ये नहीं कोई वजह कि कौन उसको ओन करता है। आफ्टर ऑल IBM कोई भी नहीं ओन करता, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो IBM ओन करते हैं, बट येट IBM एफिशिएंटली चल रहा होता है। तो एक किस्म का ओनरशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे चलाया जाए। मगर ये तो अब साबित हो चुका है कि स्टेट, हमारा स्टेट खास तौर पे कई चीज़ें, यानी कि बैंक्स, यानी कि PIA, यानी कि स्टील मिल, यानी कि जेनकोज, यानी कि डिस्कोज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक तरीके से नहीं चला सक रहा। तो इस ट्रूथ को तो अब डिनाई नहीं किया जा सकता,
बिल्कुल नहीं किया जा सकता,
ठीक है ना? तो इसका मतलब फिर इनकी प्राइवेटाइजेशन तो बजा है।
बिल्कुल
ठीक है, मगर फिर मुझे समझ नहीं आई कि क्यों हम चीजों को प्राइवेटाइज करें और कब करें। मतलब आप कह रहे हैं कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दें बट रेलवे या पुलिस को ना करें।
हाँ नदीम, ये तो सीधी सादी बात है कि जो चीज कंपेटिटिव मार्केट में कंपटीशन के साथ होगी वो निस्बतन ज़्यादा आसान है प्राइवेटाइज करना। मसलन पीआईए को प्राइवेटाइज करना, तो आप इस तरह सोच लें कि उसको बेचने बेचना छोड़ दें, आप ये जो जितने भी रूट्स हैं इनको जो इस वक्त प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको दे दें तो लोग उन पे जाने लगेंगे तो खुद ब खुद ही प्राइवेटाइज हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसी कि रेलवे है जो नेचुरल मोनोपोली है, या पुलिस है जिसका आपने कहा, वो उसको प्राइवेटाइज करना जो है वो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की का वो काम है। तो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम मार्जिन पे कुछ ऐसी चीज़ें प्राइवेटाइज कर सकते हैं जैसे कि पीआईए है जो कि कंपटीशन में फ्लरिश कर सकती है, मगर हमारा जो मसला होगा कि हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं वो खसारा कर रही हैं, इतने बिलियन का नुकसान है, उससे हम नहीं जान छुड़ा सकेंगे पीआईए को प्राइवेटाइज करके।
पर देखिए एक और भी तो है ना चीज़ के, अगर हम फॉर एग्जांपल पीआईए को प्राइवेटाइज कर भी देते हैं तो देखा जाए तो एयरपोर्ट तो फिर भी पब्लिक सेक्टर में रहते हैं।
बिल्कुल,
तो जो एयरपोर्ट में लैंडिंग राइट्स हैं वो तो फिर भी सरकार के हाथ में रहते
बिल्कुल,
हैं
बिल्कुल,
और जो एयर रूट्स हैं वो भी एक किस्म की इस तरह सरकार के हाथ में रहती हैं।
ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी उनके हाथ में
उनके रहता है। तो फिर मसला ये है कि आपने उसको सिर्फ प्राइवेटाइज कर दिया तो बाकी चीजें तो स्टेट के हाथ में ही है ना।
हाँ
ठीक, इसी तरह अगर आप डिस्कोस को लें तो डिस्को जो है लाहौर का फॉर एग्जाम्पल, मैं लाहौर में रहता हूँ, अब मेरा वास्ता तो लेस्को से है। मैं जो मर्जी कर लूं, मैं लेस्को के साथ मेरी एक किस्म की शादी हुई हुई है। अगर प्राइवेटाइज करें फिर भी मैंने लेस्को से बिजली लेनी है। लेस्को अगर चाहे तो मेरी रेट बढ़ा दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेस्को अगर चाहे तो मेरी बिजली में इनएफिशिएंसी ला दे, जैसे कि मेरे मीटर में वो बार बार मुझे ओवरबिल करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो अगर वो मोनोपोली है स्टेट के हाथों में तो वो बेचती सेठ के हाथों में भी तो मोनोपोली रहेगी कि नहीं। अगर रहेगी तो मुझे क्या फायदा हुआ।
हाँ नदीम, यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि खाली पीआईए को प्राइवेटाइज करने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। जिस आर्ग्यूमेंट के तहत हम इस तरफ जा रहे हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा कि फिर वो एकदम से एयरपोर्ट आ जाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आ जाएगा। आप कौन सी चीज हुकूमत के हाथ में छोड़ सकेंगे जब आप आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि ये इनएफिशिएंट है और ये चला नहीं सकती। तो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता लॉजिकल कंक्लूजन तो यही आएगी ना कि हर चीज इनके हाथ से निकाल ली जाए। मैं कह रहा हूं कि वो भी आप एक हद तक कर सकते हैं, आप रेलवे को कैसे उनके हाथ से निकालेंगे, और अगर निकाल भी लेंगे तो जैसे आप इसको डिस्को वगैरह का कह रहे हैं, दुनिया में बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, मगर उनको फिर स्टेट रेगुलेट करती है ताकि वो इस तरह की चीज़ें ना कर सके जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, गलत बिलिंग कर रहे हैं, आपको इनएफिशिएंट चीज़ें दें, तो फिर हमारी स्टेट जो है उसके हाथ में रेगुलेशन रह जाएगी। तो जब वो चला नहीं सकती तो हम किस बुनियाद पर ये कहेंगे कि वो एफिशिएंटली और ऑनेस्टली रेगुलेट कर लेंगी।
अगर मैं इस सवाल को थोड़ा डिफरेंटली फेस करूं कि मेरा ख्याल है ये सवाल ही गलत है कि प्राइवेटाइज क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे फॉर्मुलेट करूं आप क्या कहेंगे, मेरा ख्याल है कि हमें ये सोचना चाहिए कि स्टेट को गौर करना चाहिए मार्केट्स पे और मार्केट्स की एफिशिएंसी पे, और उसके अंदर देखना चाहिए कि स्टेट का रोल क्या है। जैसे कि हम ये एयरलाइंस की बात कर रहे थे तो एयरलाइन में स्टेट का रोल बनता है कि रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सेफ्टी के लिए आपने रेगुलेट करना है और देखना है, और एयरपोर्ट्स के आमदो रफ्त में कुछ ना कुछ आपने मॉनिटरिंग का रोल रखना है, ज़रूरी नहीं कि आपने उसके अंदर इंटरफेयर करना है। एयरलाइंस का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर चला सकता है अगर कि आप कंपेटिटिव मार्केट्स इस्टेब्लिश कर सके। वो कंपेटिटिव मार्केट्स डिपेंड करेंगी किस तरह आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, किस तरह आप रूट्स बांटते हैं, किस तरह आप एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट्स मैनेज करते हैं। अगर ये आप ठीक तरीके से गवर्नमेंट समझ सोच के मॉनिटर करके पॉलिसी बना के चला सके तो ये पूरी मार्केट एफिशिएंसी एफिशिएंटली चल सकती है, ठीक है ना जी। इसी तरह बिजली का निज़ाम भी जो है मार्केट का निज़ाम स्टेट बना सके अगर बहुत डिफरेंट तरीकों से बन सकता है, अगर वो ठीक निज़ाम बन जाए तो स्टेट उसके अंदर रेगुलेटरी अपना रोल रखे, मॉनिटरिंग रोल रखे, बाकी चीज़ें बेशक प्राइवेट सेक्टर को करने दे। क्या ख्याल है आपका?
मेरा ख्याल ये है कि अगर हम टेक्स्ट बुक देखें तो ये आर्गुमेंट जो है ये बिल्कुल 100% सही है, लेकिन अगर हम हकीकत की तरफ आ जाएं तो फिर सवाल वही आ जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा अगर है, अगर ये स्टेट सब कुछ कर सकती तो वो कई और चीज़ें भी कर सकती थी। तो PIA तो जैसे मैं कहा हवाई जहाज़ का तो ठीक है वो प्राइवेटाइज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें उनके पास रह जाएंगी उनका क्या होगा?
नहीं देखिए ना, वो आपकी बात सही है पर इन प्रैक्टिस तो यही आ जाएगी ना बात कि क्या स्टेट ये चीज़ें क्या स्टेट मार्केट्स और रेगुलेशन ठीक कर सकती है कि नहीं कर सकती, उसके अंदर फिर प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए, स्टेट पीछे हटे प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दिया जाए, ये इम्तिजाज बनता है। पर इसके लिए फिर स्टेट की नौइयत जो सी है वो बहुत बदल जाती है कंपेयर टू जो हमारे पास अभी है।
बिल्कुल बदल जाती है, और स्टेट वो रोल जो है वो कबूल करेगी अपने लिए या नहीं करेगी, जबकि इतनी चीजें उसके हाथ से निकल जाएंगी।
तो फिर कहने का ये मतलब है कि ये प्राइवेटाइजेशन वाली डिबेट ही गलत है?
मेरा तो ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन वाली डिबेट जो है वो एक सेकेंड ऑर्डर डिबेट है। हाँ सही है, इस वक्त जिस तरह की हमारी स्टेट है उसके हाथ से आप जितनी चीजें निकाल लें वो हमारे मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेहतर होगा। मगर ये सब करने के बाद भी ऐसी चीजें रह जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी जो कि इस स्टेट की जिम्मेदारी रहेगी, और उनको बेहतर करने के लिए हमें असली सवाल की तरफ जाना है कि हमारी स्टेट जो है वो ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकती, क्या वजूहात हैं, क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से स्टेट इन चीज़ों में नाकाम है।
चलो फिर एक चीज़ से तो अग्रीमेंट हो गई ना कि जी प्राइवेटाइजेशन की डिबेट होनी चाहिए एक कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। कॉन्टेक्स्ट है स्टेट ऑफ मार्केट्स और स्टेट ऑफ गवर्नेंस। ये जो एक शोर मच रहा है कि एक चीज़ के बारे में कि PIA और स्टील मिल और जेनको इसको बेच दो उसको बेच दो, ये एक किस्म की बड़ी सुपरफिशियल डिबेट है और मेरा ख्याल है हार्मफुल भी हो सकती है।
हाँ मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है कि असली सवाल जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, साथ साथ ये डिबेट ज़रूर चलनी चाहिए क्योंकि इस डिबेट के ज़रिए ही हम असली जो सवाल हैं उन तक पहुंच सकते हैं।
बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक और बात बताइए, इसके अंदर जो मुझे ख्याल आता है वो ये आता है, एक तो सवाल हमने अभी एक किस्म का डिस्कस किया वो है क्यों प्राइवेटाइजेशन, दूसरा सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि क्या प्राइवेटाइज करना है। आपने जैसे बात हुई कि पुलिस भी कर दें या क्या कहते हैं स्टेट को भी प्राइवेटाइज कर दें, तो क्या प्राइवेटाइज करना है? मैं इसको फर्दर ले जाता हूँ, फॉर एग्जांपल हम PIA प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो हम क्या PIA में प्राइवेटाइज कर रहे हैं?
नदीम फिर सवाल वही आ जाता है कि आपकी असम्पशन क्या है स्टेट की कॉम्पिटेंस और इंटेंशंस, और मैं तो कहूँगा ऑनेस्टी भी, उनके मुतालिक आपकी क्या असम्पशन है? अगर तो आप ये अस्यूम कर रहे हैं कि ये एक कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट स्टेट है, अगर ये चाहे तो PIA को ये अच्छी तरह से चला सकती है, मगर उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी तरह से चल सकती है, तो आप वो सर्विस प्राइवेट सेक्टर को दे दें। मगर फिर आपके हाथ में जो है वो जैसे हमने पहले कहा कि एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक और रूट एलोकेशन ये सब चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है, तो उनको भी अगर हम जिस लॉजिक से चल रहे हैं फिर उनको भी खामखा आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, और वो प्राइवेटाइज करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसमें फिर वही नेचुरल मोनोपोली वाली बात आ जाएगी।
सही कह रहे हैं। देखिए ना, एक और भी चीज़ है, जैसे कि कोई 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक, वो जैसे ज़्यादा 7-8 साल पहले स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये समझ नहीं आ रही थी कि हम प्राइवेटाइज क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्टील मिल में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और लग ये रहा था कि वो प्राइवेटाइजेशन ज़मीन की है और स्टील मिल की नहीं। तो मेरा जो सवाल आ जाता है, जो या मेरे जहन में जो ख्याल आता है, वो ये है कि एक जो एसेट होता है जैसे PIA है या स्टील मिल है, एसेट आपको पता है हम इकोनॉमिक्स से कई दफ़ा देखते हैं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। अब स्टील मिल के अंदर लैंड भी है, स्टील प्रोडक्शन भी है वगैरह, और फिर उस एसेट को जो कहते हैं रिस्ट्रक्चर करना या एसेट स्ट्रिपिंग करना, उससे एक एसेट का नेचर ही बदल जाता है। अब PIA के अंदर होटल्स भी हैं, PIA के अंदर डोमेस्टिक रूट्स भी हैं, फॉरेन रूट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स का कुछ हिस्सा भी है और एसेट्स भी हैं। तो हम जब बेचने जा रहे हैं तो हम क्या बेचेंगे? क्या हम रूजवेल्ट भी साथ बेच देंगे, और क्या ये बंडल करके एसेट्स बेचने का तरीका ठीक है या नहीं?
नदीम, ये जैसे आपने कहा, ये बहुत गंभीर सा वो है, सवाल है, और इसमें फिर वही एक मसला फिर ये आ जाएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि स्टेट हमारी इनएफिशिएंट है, तो हम उस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो ये सारे सवाल जो हैं उनको एक कॉम्पिटेंट तरीके से और एक ऑनेस्ट तरीके से इन इन पे सोचेगी और इसको इस तरह से स्ट्रक्चर करेगी डील को कि ये सबके मुल्क के फायदे में हो। क्योंकि अभी तक जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई जो है वो स्कैम सामने आ जाता है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है, क्योंकि जब हमने PTCL की प्राइवेटाइजेशन की तो लग रहा था जैसे कि हमने बहुत पैसे कमा लिए, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये इवेंचुअली कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो आज तक $800 मिलियन यानी कि 40% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस हमने कलेक्ट नहीं की। वो UAE ने हमें वो कीमत दी नहीं, वो पैसे दिए ही नहीं जो अभी तक उनके पास पड़े हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपने हमें पूरा एसेट तो अभी तक दिया नहीं। तो लगता ये है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ये मालूम नहीं था कि उन वो एसेट क्या बेच रहे थे, या उनके पास वो पूरी चीज़ नहीं थी। जैसे कि मैं आपको गाड़ी देने जाऊँ, बीच में से गेयर बॉक्स भूल जाऊँ, तो आप मेरे से लड़ते रहें कि भाई आपने गेयर बॉक्स दिया नहीं मुझे, ठीक है ना। तो ये हमने पिछली बारी भी किया था, इस बारी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो हम क्या होटल्स और रूट्स इकट्ठी बेच रहे हैं, और क्या ये अच्छी बात भी है कि नहीं? क्योंकि मुझे तो जहां तक याद पड़ता है कि आप गुड्स को बंडल करेंगे दोनों की कीमत मैं गिरा दूंगा, बायर दोनों की कीमत गिरा देगा, ठीक है कि नहीं? तो इस सिलसिले में फिर हमें क्या, हमें बेहतर तरीके से एसेट सोच के बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए?
नदीम, सोच का तो कोई मतबादल नहीं है, जाहिर है सोचना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि कौन सोचेगा। ऐसी बड़ी बड़ी डील्स में आमतौर पे जो इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं जो कि इस चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं, उनसे मशवरा किया जाता है, बल्कि उनको कई दफ़ा तो आप उनको हायर ही करते हैं कि वो आपकी डील स्ट्रक्चर करेंगे। तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़, कोई ट्रांसपेरेंट ऐसा प्रोसेस होगा, करना पड़ेगा, जिसमें लोगों को एतमाद हो कि हाँ ये चीज़ जो बिक रही है ये सही बिक रही है, इसमें कोई स्कैम नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई बीच में से कोई हाथ नहीं वो कर रहा।
पर हम अब वो बाहर के फर्म्स को तो हायर करते हैं, उनको बड़े पैसे भी देते हैं और वो माशाल्लाह के ये काम भी करते हैं, बट एक अंजुम आई थिंक आप मेरे से एग्री करेंगे, वो फर्म जो उनसे होते हैं उनको तो अपनी फ़ी कलेक्ट करनी होती है और वो कोशिश करते हैं जितनी जल्दी से निकाल दें चीज़ तो निकाल दें, ठीक है ना। तो अगर हम अपने आप ड्यू डिलीजेंस नहीं करेंगे, अगर हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या हमारे इदारे हैं, अगर उनमें इतना दम नहीं है कि वो खुद समझ सकें अपनी डील को, वो खुद समझ सकें कि उनके पास एसेट क्या है, कैसे रिस्ट्रक्चर हो सकता है, कैसे उसका शेप निकलेगा आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, तो फिर कोई बाहर का बंदा अपनी फी लेके क्यों आपको, आपका ख्याल करेगा?
हाँ नदीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस चीज़ का भी जो एक गलत फहमी है कि पब्लिक सेक्टर में सब चोर होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो है सब बड़े ईमानदार लोग होते हैं, उस पर भी जो है फौरन से ही आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म भी अपने इंटरेस्ट में करती हैं, और अगर उन्हें भी बेईमानी करनी हो तो वो कर लेती हैं। तो अब हमें खुद ड्यू डिलीजेंस करनी है। अब सवाल ये है कि हमारे पास इतनी काबिलियत है, इस किस्म के लोग हैं जो इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन पे ड्यू डिलीजेंस कर सकें। कम से कम मुझे मिनिस्ट्रीज में तो इस तरह की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नज़र नहीं आती। तो इसका एक इलाज ये हो सकता है कि आप कोई इंडिपेंडेंट, सिर्फ PII के लिए नहीं बल्कि बाकी सब चीज़ों के लिए भी कोई एक इंडिपेंडेंट बोर्ड या कमीशन या कोई ऐसा चीज़ बनाएं जिस पे इस तरह के लोग हों जिनकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी हो, क्रेडिबिलिटी हो, मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी, और वो इस पे एक इंडिपेंडेंट राय दे सकें कि हाँ हमने इस ट्रांजैक्शन को देखा है और हमारे ख्याल में ये ट्रांजैक्शन जो है ये लेजिटिमेट है, जायज़ है, मुल्क के इंटरेस्ट में है। तो एक इस तरह का थर्ड पार्टी वॉचडॉग जो है उसकी ज़रूरत होगी। आप फिर इस पे फौरन यही कहेंगे कि उस पे जिस तरह से गवर्नमेंट बाकी इदारों पे के सरबराह लगा देती है उस पे भी उसी तरह के लोग लगा देगी, इसका तो कोई क्यों नहीं, इसका तो कोई इलाज नहीं है।
अब देखें ना, मसला तो यही है ना कि आप ये कह रहे हैं मुझे कि भाई एक और कमेटी बना दी जाए। अंजुम, हमारे यहाँ तो कमेटियाँ रोज़ बनती हैं,
हाँ
ठीक है, और रोज़ टूटती हैं, कुछ समझ नहीं आती, APCs रोज़ होती हैं। मुझे एक बात बताएं जो मुझे हमेशा तंग करती है, क्या आपको ये बॉदर करती है कि नहीं करती, कि ये प्राइवेटाइजेशन चले ले लें, इसके ऊपर आपने कभी किसी ट्रांजैक्शन का कोई अच्छा ऑफरिंग डॉक्यूमेंट या जो भी कुछ कोई चीज़ हो मैं पता चलेगा क्या हो रहा है कभी देखा है आपने?
नदीम, मैंने कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं देखा, पाकिस्तान में तो शायद वो पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं है।
एग्जैक्टली हाँ। दूसरी चीज ये कि ये एक्सपोस्ट इवैल्यूएशन, कोई इवैल्यूएशन ही करके दे दे हमें, वो भी नहीं देखा
है, वो भी नहीं,
ठीक है ना। और ये जितनी कमेटियां बनती हैं इनमें कभी कागजी कार्रवाई तो हम करते ही नहीं ना, कोई नजर आए कि कमीशन अगर बनाई चले उसकी रिपोर्ट ही दिखा दे, चले जो मेंबरान है वो अपने डिसेंटिंग ओपिनियन ही दे दे। तो जब ये होता ही नहीं तो मैं आपकी एक बात कैसे मान लूं कि कमेटी बना दे?
नहीं, वो मैं बात आपकी आपकी जो है उससे इत्तेफाक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक की तरफ से जो इसरार होना चाहिए ये एक 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 सियासी मैदान है, उसमें कम से कम ये एक इसरार जरूर होना चाहिए कि हमें एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन।
अब आप इकोनॉमिक से निकल गए, फिर आ गए विशिंग पे, पब्लिक हमारी इसरार करने वाली नहीं है। अंजुम
नदीम, देखो अगर पब्लिक इसरार करने वाली नहीं है और हम इस प्रेमिस से शुरू कर रहे हैं कि हुकूमत नाअहल और बददियानत है, तो हम फिर इसमें किस तरह से वो चीज़ें निकाल रहे हैं जो एफिशिएंट हों और बेहतर हों?
यही तो पज़ल है, क्या करें?
ये बहुत बड़ा पजल है
और इसमें हम फंस गए हैं। पब्लिक से ना आप एक्सपेक्ट करें और हुकूमत से भी ना एक्सपेक्ट करें। अब बीच में क्या सही कंसेप्चुलाइजेशन है, क्या सोचना चाहिए हमें, उसी के लिए तो हम बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई हम भी समझ सकें बात क्या हो रही है।
हाँ बिल्कुल।
तो
बिल्कुल,
इसके अंदर मैं आपको तीसरी बात पूछना चाहता हूँ, वो ये कि हमने अब ये भी कह दिया कि जी सवाल पूछना चाहिए कि क्यों प्राइवेटाइजेशन, और ये भी पूछना चाहिए क्या कर रहे हैं प्राइवेटाइज, भाई क्या एसेट हमें बताएं तो उसे एग्जैक्टली क्या बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे जब डिस्कोस बेचने जाएंगे, डिस्कोस के पास बहुत सारी जमीन है, क्या ये जमीन बेचेंगे फिर एक वो डिस्कोस को तोड़ तोड़ के लोग हाउसिंग कॉलोनीज बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई क्लैरिटी तो हमें दे दें ना। या एक और भी तरीका हो सकता है, कह दें कि जमीन हम बेच ही नहीं रहे, हम सिर्फ लीज कर रहे हैं, ठीक है, और वो जब कि आप ये पर्पस खत्म होगा वापस आ जाएगी स्टेट के पास। मतलब तरीकेकार हो ताकि जिस चीज के लिए आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं वही चीज रहे, वो ये नहीं कि वो कन्वर्ट कर दे। अगर वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी आप सामने रखें, बात जो भी बात हो खुले तरीके से हो, क्या ख्याल है?
बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत अहम है। जो भी चीज़ बिक रही है पूरी उसकी एसेट की इन्वेंट्री होनी चाहिए कि ये चीज़ें शामिल हैं, इस चीज़ की को इस तरह से असेस किया गया है, और ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी आवाम जो है उसको भूल जाएं, वो नहीं पूछेगी, तो हम भी तो आवाम में ही शामिल हैं, हम पूछ रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि और लोग भी अच्छा, ये सवाल पूछें।
अब आप अवामी बन गए माशाल्लाह। चलिए तीसरे सवाल की तरफ आए। ये हाँ। जो है कि जिस तरह ये भी उठता है सवाल कि ये कैसे प्राइवेटाइज करें, आफ्टर ऑल आपको भी पता है कि बाजार में बेचने के तरीके बहुत सारे हैं, एक तरीका नहीं है, ठीक है। हमारी सरकार ने एक ही तरीका बनाया हुआ है, वो ये है कि जी किसी बाहर के फर्म को पकड़ लें या कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म को, वो एडवाइजर लग जाए, ठीक है, वो किसी अंधेरे कमरे में बैठ के एक स्ट्रेटेजिक बायर ढूंढ ले और वो स्ट्रेटेजिक बायर से समझौता हो जाए और वो स्ट्रेटेजिक बायर कंपनी ले ले। क्या आपके ख्याल में ये एक ही तरीका है बेचने का?
नहीं नदीम, ये तरीका तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें तो अंडर हैंड डील्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका इम्कान है।
ये जो ऑक्शनिंग के तरीकेकार बनाते हैं उसमें रूल्स ऐसे बनाते हैं कि उसमें एक ही किस्म का बंदा आ सकता है, फॉर एग्जांपल आप और मैं उसमें नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो क्या वजह है, फॉर एग्जांपल मुझे कभी समझ नहीं आई कि हम स्टॉक मार्केट को क्यों नहीं यूज करते हैं, जहां आप और मैं भी खरीद सकते हैं, चाहे 10-10 शेयर खरीदे चाहे 5-5 शेयर खरीदे, इसमें कोई मजायका है?
इसकी जरा वजाहत करें कि इसको इसकी पब्लिक ऑफरिंग कैसे कैसे होगी
भाई। फॉर एग्जाम्पल आप जो ये कई ये कंपनीज हैं इनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करें, जैसे होती है आईपीओ होता है, ऑफर होता है, तो एक आईपीओ हो, आप और मैं भी ले सके, आम आदमी भी ले सके, वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी। जरूरी तो नहीं कि एक सेठ आके कंपनी चलाए, आफ्टर ऑल दुनिया में बेशतर कंपनी है, एप्पल हुआ, ये हुआ क्या कहते हैं आईबीएम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, मतलब एक कोई स्ट्रेटेजिक बंदे तो नहीं होते वहां, मैनेजमेंट होती है और शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ये क्या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की जो अहमियत है, जिसके अंदर बड़ा क्लैरिटी है कम अज कम मुझे तो, कि वो सेठ सिर्फ हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर।
हाँ,
तो ये एक तरीका बेचने का। दूसरा तरीका बेचने का है कि आप स्टॉक मार्केट में डाल दें।
हाँ हाँ, उसमें फिर ये सवाल होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट में इतनी डेप्थ है कि वो इतना बड़ा एसेट जो है उसको अब्सॉर्ब कर सके।
वेल अगर के हम वहां डालना शुरू करें चीजें तो और डेप्थ बनेगी, और जितना हम फ्लोर से बाहर रखेंगे चीजें उतनी डेप्थ गिरेगी, कि नहीं?
हाँ ये सही है, सिर्फ इसमें इसमें सवाल ये है कि हम फिर उस रेगुलेशन की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट पे सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो कि जिनका दिवालिया निकल चुका है,
सही,
तो वो ये भी हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट पे कोई चीज डालें उसकी उसके उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या आपको होंगे तरीके?
वो रिस्क तो हर जगह ही है, ठीक है ना जी, रिस्क तो हर जगह ही है, बट एक और भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेठों को दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी चीजें खरीदने की, तो क्या वजह है कि पेंशन फंड्स या और कोई ग्रुपिंग्स हैं वो क्यों नहीं ले सकती? फॉर एग्जाम्पल मेरे नजरिए में तो ये है कि अगर हमें ऑक्शन करना, अगर हमें कोई चीज बेचनी है, तो हमारी तो कोशिश होनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके अगेन कॉम्पिटिशन बढ़े, मोनोपोली ना बढ़े। अगर आप सिर्फ सेठों को देंगे तो सेठों की मोनोपोली बढ़ेगी। अगर आप और तरीके का ढूंढेंगे कि और किस्म के लोग लें, एम्प्लॉयज ले लें, यूनियंस ले लें वगैरह, किसी और तरीके से अगर आप बेच, तो एक किस्म का आप मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ाते हैं।
तो ये तो प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में पहला जो स्टेज है वो तो यही होनी चाहिए कि कोई शख्स इस चीज पे का मुतालिया करे कि इनको बेचने के कितने तरीके हैं और कौन सा तरीका जो है पाकिस्तान में ज्यादा सूदमंद साबित होगा।
आपने कितना अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, मुतालिया।
हाँ,
मुझे तो लगता है हमें हर ये तीनों सवालों का मुतालिया करना चाहिए, क्यों, क्या और कैसे।
हाँ बिल्कुल,
और
बिल्कुल।
ये तीनों सवालों का मुतालिया मेरे नजरिए में तो हुआ ही नहीं अभी तक। आपका ख्याल है हुआ है, मैं कोई गलत कह रहा हूँ?
नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा।
हाँ, लगता तो यही है कि बस एक पी आई ए बेच दो, स्टील मिल बेच दो, स्टील मिल बेच दो, پر جو مطالعہ ہے میں ڈھونڈتا رہا ہوں, میں نے کہا میں ڈھونڈ لوں کوئی ایسا مجھے ڈاکیومنٹ مل جائے جس میں مجھے کوئی ریسنٹ طریقے سے یہ تینوں سوالوں کے جواب دیے ہوں, مجھے تو نہیں ملا. اگر آپ کو ملا تو مجھے پلیز بھیج دیں.
نہیں مجھے بھی نہیں ملا, اور وہ میرا خیال میں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اس طرح کا کوئی دستاویز بنانے کا کوئی انسینٹیو بھی نہیں ہے, کیونکہ بغیر کسی کو کچھ بتائے ہوئے بیچنے اور خریدنے میں جتنا فائدہ ہے وہ مطالعے کے بعد فائدہ نہیں رہے گا.
تو چلیں پھر یہیں بات ختم کرتے ہیں کہ مطالعہ ہونا چاہیے, اور میرا خیال یہ بار بار اس بات پہ ہم آ جائیں گے, اس موضوع پہ آ جائیں گے. مطالعہ تو اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پہ اور سوچتے رہتے ہیں. تو بتائیے اور کوئی آخری الفاظ آپ نے کہنے ہیں یا
نہیں؟ میرے خیال میں ہم ایک اچھے نتیجے پہ پہنچے کہ اس ہم سوال جو ہے اس کے نیچے جو چھپے ہوئے سوالات ہیں ان کو ہمیں اجاگر کرنا ہے اور ان پہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے.
انجم تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.
شکریہ ندیم, انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سوچ بچار کے ساتھ میرا نام ندیم الحق ہے
اور میرا نام انجم الطاف ہے.